SBS हिंदी।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हम अक्सर जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, खास करके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अक्सर नेगेटिव गियरिंग, ये जो टर्म है वो बार बार सुनने में आती है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये टर्म क्या है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इसके बारे में साफ साफ बहुत कम लोग समझ पाए हैं या फिर जान पाए हैं। तो इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं श्री अमित जादवान जी, जो एक्सपर्ट हैं ये पूरी जो रियल एस्टेट मार्केट है, रियल एस्टेट का फील्ड है उसमें। अमित जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
नमस्कार हरिता जी, धन्यवाद।
अमित जी, जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव गियरिंग, ये शब्द तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन अगर सरल शब्दों में उसको समझाना हो कि ये पूरी व्यवस्था क्या है, तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है या बात इतनी साफ नहीं है। क्या आप समझा सकते हैं ये पूरी टर्म को, ये पूरी प्रक्रिया को?
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ नेगेटिव गियरिंग को कुछ जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जाती है और बहुत से लोग इसको अच्छी तरह से समझते नहीं है। तो जब हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों की समझ ये है कि नेगेटिव गियरिंग का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो आपके जो प्रॉपर्टी रखने के लिए जो आपका खर्चा है, इंटरेस्ट एंड मॉर्गेज पेमेंट्स, उससे कम अगर रेंट है तो आपको नेगेटिव गियरिंग हो रही है। ज्यादातर लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि नेगेटिव गियरिंग में सिर्फ रेंट इनकम और उसके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं अकाउंट होते हैं, उसमें साथ साथ आपको जोड़नी होती है मैनेजमेंट फीस, वो आपका एक खर्चा है। अगर स्टार्टअप फीस है उसको जोड़ना होता है, वो आपका एक खर्चा है। रेट्स आप पे करते हैं वो भी एक खर्चा है। मेंटेनेंस कॉस्ट पे करते हैं प्रॉपर्टी रखने के लिए, वो भी एक खर्चा है। तो ये जो सारे खर्चे हैं, इन सबको मिला के आपकी कॉस्ट आती है प्रॉपर्टी को रखने की, मैनेज करने की, उसे ओन करने की। और जो रेंट आता है वो आपकी इकलौती एक इनकम होती है उस प्रॉपर्टी से। तो अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और रेंट कम है, तो वो जो डिफरेंस है उसको नेगेटिव गियरिंग बोला जाता है। और लोग इसकी तरफ जनरली अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आप नेगेटिव गियरिंग को अपने टैक्स, इनकम टैक्स के थ्रू ऑफसेट करके अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं।
तो आपने कहा कि लोग इसलिए उसकी तरफ आकर्षित होते हैं ताकि कहीं ना कहीं जो आपका टैक्स है, आप जो कर देते हैं, उसमें बचत कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग समझते होंगे कि ये चीज़ लाभदायी है। अगर आपको पूछना चाहें कि क्या फ़ायदे हैं नेगेटिव गियरिंग में, और नुकसान की जगह पर हम ये कहेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उतना लाभ नहीं देती।
तो नेगेटिव गियरिंग में सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है कि मान लीजिए अगर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस हो रहा है $10,000 साल का, आपकी इनकम है $50,000 साल की, तो आप उस लॉस को अपनी इनकम के अगेंस्ट ऑफसेट कर देंगे, तो 50 में से 10 गए, 40,000 बचे। तो आप जब एंड में इनकम टैक्स देंगे तो सिर्फ 40,000 पे देंगे, क्योंकि 10,000 का आपको लॉस हुआ। लोग इस छोटे से टैक्स बेनिफिट को, जो 10,000 के ऊपर उनका टैक्स जाना था, उसको वो इतनी तवज्जो देते हैं कि नेगेटिव गियरिंग की प्रॉपर्टीज लोग एक्चुअली बाहर जाके मेहनत करके ढूंढते हैं कि हमको नेगेटिव गियरिंग प्रॉपर्टी मिले जिससे हम टैक्स बचा सके। जो लोग जनरली नहीं समझते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके टैक्सेस बचाने के लिए नहीं होता है, आपकी टैक्स सेविंग्स के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पॉजिटिव गियरिंग और इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में। अगर आप पैसा अपना लॉस करने के लिए, पैसा लूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कोई बहुत स्मार्ट चीज नहीं है। इन्वेस्टमेंट होता है पैसा बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए। तो मेरी एडवाइस जनरली यही रहती है सबको कि नेगेटिव गियरिंग को इतनी तवज्जो ना दीजिए। आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वहां पे कीजिए जहां पे आपकी इनकम बने, आपका कैश फ्लो बने, पॉजिटिव गियरिंग हो, जिससे कि आप अपना बड़ा पोर्टफोलियो आगे क्रिएट कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें।
अगर आप ये भी समझा दें कि पॉजिटिव गियरिंग क्या होता है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है।
जी, तो पॉजिटिव गियरिंग, जैसे नेगेटिव गियरिंग होती है प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए, ओन करने के लिए आपको लॉस हो रहा है, उसकी रेंटल इनकम इतनी नहीं है, वैसे पॉजिटिव गियरिंग एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका रेंट इतना आ रहा है, जो आपके उस सारे खर्चों से ज्यादा है, तो एट द एंड ऑफ द डे, हर महीने के एंड में आपको कुछ अमाउंट बचेगा उस रेंट में से, क्योंकि आपका खर्चा कम है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। और वो जो अमाउंट बचेगा, वो अमाउंट आपका एक्यूमुलेट होता जाता है, वो आपकी इनकम बन जाता है। उस इनकम को आप बहुत चीजों में काम ला सकते हैं। आगे अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, आप उसकी तरफ डिपॉजिट के लिए इकट्ठा कर सकते हैं उसको। आपको अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी रेंटल है, 2-3 महीने कभी खाली पड़ी रहती है, तो आपको वो जो इकट्ठा हुआ पैसा है पॉजिटिव गियरिंग के प्रॉफिट से जो आया है, वो पैसा आपको मदद करेगा उस टाइम पे जब आपके पास कोई टेनेंट नहीं है, या मान लीजिए कोई मेंटेनेंस इश्यू आ जाता है प्रॉपर्टी में एकदम से, तो आपका वो जो प्रॉफिट हो रहा है पॉजिटिव गियरिंग की वजह से, वो आपका एक सेफ्टी नेट बना रहेगा हमेशा, जो आपको मदद करता रहेगा। तो पॉजिटिव गियरिंग इज बेसिकली द प्रॉफिट दैट यू गेट्स फ्रॉम अ प्रॉपर्टी।
हमेशा सभी लोग चाहते हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, तो आपने जिस तरह से कहा कि नेगेटिव गियरिंग के आपके मुताबिक लाभ कम है और सलामती या नुकसान ज़्यादा है, तो पॉजिटिव गियरिंग की बात करते हैं। अगर ये तुलना की जाए नेगेटिव गियरिंग वर्सेस पॉजिटिव गियरिंग, तो क्या होगी?
जी, मेरे हिसाब से मुझे हमेशा पॉजिटिव गियरिंग अच्छी लगती है, और मैं वही अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी करता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव गियरिंग इज बेसिकली योर इनकम। आपको इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से। अगर आपको इनकम आ रही है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रो करने में सहायता मिलती है। जब आपकी बोरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी लोन सर्विसिबिलिटी बढ़ती है। नेगेटिव गियरिंग से आपकी ये चीजें कम होती हैं। आपको टैक्स का फायदा जरूर मिलता है, पर नेगेटिव गियरिंग आपको दूसरी प्रॉपर्टी लेने में मदद नहीं करती। एक पॉजिटिव गियरिंग होती है जो आपको अपना पोर्टफोलियो बड़ा करने में मदद करती है। और 5-10-15 साल में अगर आपने 5-10 प्रॉपर्टीज अपनी क्रिएट कर ली, तो आप ये सोचिए कि उसके बाद यू कैन बी एक्चुअली सेमी रिटायर्ड, आप रिटायर हो सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज अगर पेड ऑफ हो जाती हैं 10-20 साल में, तो वो जो भी इनकम आ रही है, वो आपको अपनी लाइफ आगे बढ़ाने में और सिक्योर करने में हेल्प करेगी, जो कि नेगेटिव गियरिंग नहीं करती।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि किस तरह से नेगेटिव गियरिंग और पॉजिटिव गियरिंग काम करती है। दोनों में तुलनात्मक अगर समीक्षा, तो कौन सा लाभदायी होता है भविष्य में अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो यहाँ पर कही गई बातें हम आशा करते हैं श्रोता मित्र आपको बहुत ही लाभदायी निकली होगी। अमित जी, SBS हिंदी के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।